नमस्कार, मैं घनश्याम मीना, ACS 4 रावत भाटा, हिंदी TGT। आज मैं आपको बाल महाभारत कक्षा 7 की पूरक पाठ्य पुस्तक कपाट अज्ञातवास के विषय में स्पष्ट करना चाहूँगा। महाभारत में जब पांडव चौसर के खेल में हार गए थे तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। जब उनके 12 वर्ष वनवास की अवधि पूरी हो गई तो अज्ञातवास के समय उन्हें छिपकर रहना था, क्योंकि अज्ञातवास में उन्हें अगर किसी ने पहचान लिया तो पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। इसी शर्त के अनुसार वो अज्ञातवास में ऐसी जगह पर रहना चाहते थे जहाँ किसी को उनके बारे में पता ना चले। इसलिए उन्होंने यह निर्णय किया कि वो मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ भेष बदल कर रहेंगे। और इस प्रकार पांचों पांडव और द्रौपदी भेष बदल करके अज्ञातवास के समय विराट राजा के यहाँ रहते हैं और अलग अलग काम करते हैं नौकर के रूप में। तो इस प्रकार युधिष्ठिर वहाँ पर अपने नाम को बदलकर कंग के नाम से दरबारी बन गए और राजा के साथ चौपड़ खेलकर दिन बिताने लगे। भीमसेन बल्लव के नाम से रसोइया का मुखिया बनकर रहने लगा। वह कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर या हिंसक जो जंतु है उनको बस में करके राजा का दिल बहलाया करता था। और अर्जुन ने अपने भेष बदल करके भृन्नला के रूप में रणवास की स्त्रियों, खासकर विराट राजा की जो कन्या थी उत्तरा और उसकी सहेलियां एवं दास दासियों को नाच गाना सिखाने का कार्य किया। नकुल ग्रंथिक के नाम से विराट राजा के यहाँ रहने लगा और घोड़ों की देखभाल, उनकी बीमारियों का इलाज करने का कार्य वो करने लगा। इसी प्रकार सहदेव तंतीपाल के नाम से वहाँ पर रहने लगा और गाय बैलों की देखभाल करने लगा। पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी, जिसकी सेवा टहल के लिए कितनी ही दास दासियाँ रहती थी, वह भी वहाँ पर अज्ञातवास के समय रानी सुदेशना की सेवा शुश्रूषा करती हुई रनवास में सैरंद्री के नाम से काम करने लगी। रानी सुदेशना का जो भाई है कीचक, वो बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था और अपने कुल के लोगों को साथ लेकर कीचक ने विराट की शक्ति को दूर दूर तक फैलाया था। कीचक की धाक को लोगों पर जमी हुई थी और मत्स्य देश का राजा तो विराट केवल नाम का ही राजा था, पूरे शासन को कीचक ही चलाता था। यहाँ तक कि स्वयं विराट भी कीचक से डरा करते थे। वनवास की अवधि पूरी हुई तभी से दुर्योधन ने उधर अपने गुप्तचरों को पांडवों की खोज के लिए भेज दिया था। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई, क्योंकि कीचक को क्या है, भीम ने विराट के यहाँ रहते समय मार डाला था, क्योंकि उसकी जो नज़र है वो हमेशा द्रौपदी पर ही रहती थी और वह द्रौपदी को गलत दृष्टि से देखता था। तो एक दिन योजना बना के भीम और द्रौपदी और अर्जुन ने उसको, कीचक को क्या है, द्रौपदी ने भीम से प्रार्थना की कि ये मेरा अपमान करता है, मेरे साथ में दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है, इसका वध आज रात होना ही चाहिए। तो इस प्रकार भीम ने क्या है, कीचक को मार डाला। और दुर्योधन को जब ये बात पता चली तो दुर्योधन ने सोचा कि इतना बलिष्ठ कीचक को पांडवों के अलावा और कोई नहीं मार सकता। हो सके पांडव विराट के यहीं छिपे हुए हैं, तो इस प्रकार मत्स्य देश पर हमला कर देना चाहिए। यदि पांडव वहाँ होंगे तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे। यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले ही उनको पहचान लेते हैं तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के लिए फिर से वनवास करना होगा। यदि पांडव विराट के यहाँ नहीं भी हुए तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमारे तो दोनों ही हाथों में लड्डू है। दुर्योधन की यह बात सुनकर त्रिगर देश का राजा सुशर्मा उठा और बोला, राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु है। कीचक ने मुझे भी बहुत तंग किया था, इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उससे अपना पुराना बैर भी चुका लेना चाहता हूँ। कर्ण ने सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया, समर्थन किया। राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करें और जब विराट अपनी सेना लेकर उसका मुकाबला करने जाए तब ठीक इसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर अचानक विराट नगर पर छापा मार दे। इस प्रकार उन्होंने अपनी योजनाएं बनाई और मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। मत्स्य देश के दक्षिण हिस्से पर त्रिगर्त राज की सेना छा गई और गायों के जो झुंड के झुंड थे सुशर्मा की सेना के कब्जे में आ गए। कंक जो युधिष्ठिर ने क्या है विराट को सांत्वना देते हुए कहा, राजन चिंता ना करें, मैं भी शस्त्र विद्या सीखा हुआ हूँ। मैंने सोचा है कि आपके रसोईया वल्लभ, अश्वपाल ग्रंथिक और तंतीपाल भी बड़े कुशल योद्धा है। मैं कवच पहनकर रथारूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। आप भी उनको आज्ञा दे कि रथारूढ़ होकर मेरे साथ चले। सबके लिए रथ और शस्त्रास्त्र की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर विराट बड़े प्रसन्न हो गए। उनकी आज्ञा अनुसार चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर आ खड़े हुए। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उन पर चढ़कर विराट और उनकी सेना समेत सुशर्मा से लड़ने चले गए। राजा सुशर्मा और विराट की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी सारी सेना तितर बितर हो गई, सैनिक भागने लगे। यह हाल देखकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, भीम, विराट को अभी छुड़ा कर लाना होगा और सुशर्मा का दर्प चूर करना होगा। दर्प यानी घमन। यदि तुम सदा की भांति सिंह की सी गर्जना करने लग जाओगे तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। इसलिए सामान्य लोगों की भांति रथ पर बैठकर और धनुष बाण के सहारे लड़ना ठीक होगा। तो युधिष्ठिर ने भीम को समझाया कि आप अपने मद में कहीं सिंह नाद ना कर दे, क्योंकि आप जब युद्ध करते हो तो शेर के जैसे दहाड़ते हो, तो ऐसे नहीं, सामान्य लोगों की भांति ही आपको युद्ध करना होगा। आज्ञा मानकर भीमसेन रथ पर से ही सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार करने लगा। थोड़ी ही देर की लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। सुशर्मा की पराजय की खबर जब विराट नगर पहुंची तो नगर वालों ने नगर को खूब सजाकर आनंद मनाया और विजयी राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चल पड़े। इधर नगर के लोग विजय की खुशियां मना रहे थे और राजा की बाट जोह रहे थे, इंतजार कर रहे थे। तो उधर उत्तर की ओर से दुर्योधन ने तबाही मचा दी, क्योंकि उत्तर की ओर से दुर्योधन ने हमला कर दिया। राजकुमार उत्तर जो विराट का पुत्र था तो बिल्कुल डर गया था और कांप रहा था। उसने भृन्नला से कहा, भृन्नला मुझे बचाओ इस संकट से, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। इस प्रकार राजकुमार उत्तर को भयभीत और घबराया हुआ जानकर भृन्नला ने उसे समझाते हुए और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, राजकुमार घबराओ नहीं, तुम तो सिर्फ घोड़ों की रास संभाल लो। इतना कहकर अर्जुन ने उत्तर को सारथी के स्थान पर बैठा कर रास उसके हाथ में पकड़ा दी। राजकुमार ने रास पकड़ ली। आचार्य द्रोण यह सब दूर से देख रहे थे, उनको विश्वास हो रहा था कि यह अर्जुन ही है। तो द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को पहचान लिया था, क्योंकि वो जिस प्रकार से रथ पर आरूढ़ थे और अपना धनुष हाथ में लिए हुए थे, तो द्रोणाचार्य जी ये सारा दृश्य देख रहे थे। उन्होंने यह बात इशारे से भीष्म को भी बता दी। यह चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला, हमें इस बात से क्या मतलब है कि यह औरत के भेष में कौन है? मान ले कि यह अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो उससे काम ही बनता है। शर्त के अनुसार उन्हें और 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ ला खड़ा किया, उसने गांडीव संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की, तो अर्जुन अभी प्रकट रूप में उनके सामने आ गया था और अपना गांडीव संभाला और उससे डोरी चढ़ाकर जोर से टंकार की। कौरव सेना टंकार ध्वनि से सचेत होने भी नहीं पाई थी कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी। उसमें खलबली मच गई कि पांडव आ गए हैं। इस प्रकार इस अज्ञातवास के समय विराट राजा की ओर से अर्जुन, जो अज्ञातवास का जो समय पूर्ण हो गया, उसके बाद वो प्रत्यक्ष रूप से सबके समक्ष प्रकट हुआ और हस्तिनापुर की जो पूरी सेना थी, जो विराट पर आक्रमण करने के लिए आई थी, उस सब को अर्जुन ने युद्ध में विराट के यहाँ बुरी तरह से परास्त करके वापस खदेड़ दिया। तो इस प्रकार ये अज्ञातवास पाठ के बारे में मैंने आपको स्पष्टीकरण किया है। अब हम अगली कक्षा में प्रतिज्ञापूर्ति के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।